Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद भगवान श्री गोविंद के चरणों का श्रवण और वर्णन सुन रहे हैं। पहले अध्याय में नैम शरण्या के ऋषियों ने कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए, मानव कल्याण के लिए जो अनुष्ठान यज्ञ क्या किया था, उसमें बहुत बड़े सौभाग्य से भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से सुखदेव का शिष्य उग्रसर्व सूता पधारा है और सबने उसको स्वागत करके और जो प्रश्न छह पूछे हैं, और दूसरा अध्याय जो हमने कल शुरू किया था, इस दूसरे अध्याय का नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। वैसे भगवान दिव्य है, जीवात्मा भी भगवान के अंश होने के नाते दिव्य है, और जब वो परम दिव्य भगवान की दिव्य सेवा करेगा तब असल में वो अपने दिव्य पद को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये, जीवात्मा संसार की भौतिक पदार्थ की बनी हुई नहीं है तो वो दिव्य है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो भगवान का अंश है, भगवान जैसे दिव्य है तो जीवात्मा भी दिव्य है। तो उस दिव्य जीवात्मा का जो दिव्य धर्म है वो भगवान की सेवा है, तो वो भगवान की सेवा मुख्य साधन है और भगवान की प्रीति मुख्य लक्ष्य है। तो ये जो प्रश्न किए गए थे उनका उत्तर देने से पहले जो मर्यादा सूत गोस्वामी ने भागवत में स्थापित की है, और आगे चलकर सुखदेव महाराज भी ऐसे प्रार्थना करेंगे, अद्भुत प्रार्थना वो भी करेंगे, तो हम सबके लिए एक शिक्षा है, जब भी प्रवचन शुरू करें अथवा भगवान के महिमा गुणगान करना हो तो पहले पूर्व आचार्यों को, गुरुजनों को प्रार्थना करके उनकी कृपा को, उनको हाथ जोड़ के कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने आप को उनके हाथों में एक यंत्र के रूप में दे देना चाहिए, उनको जैसे चाहिए वैसे वो आपके द्वारा भगवान की लीलाओं का, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करें। तो ऐसे शरणागति के भाव से सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को उसकी महिमा के साथ प्रणाम करके, और ये धारणा हृदय में धारण कर रहा है, वो सुखदेव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मेरी वाणी के द्वारा सुखदेव भागवत का वो रहस्य जिनको जो ये जानना चाहते हैं वो बोले, और मैं केवल उसके लिए एक यंत्र बन जाऊं, इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं। ये सूत गोस्वामी के कथा शुरू करने से पहले भाव है, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी ये शिक्षा है कि हमेशा कभी भी स्वयं से किसी का उत्तर देने के बजाय पहले तो प्रणाम करना चाहिए अपने गुरुजनों को, और विशेष रूप से अपने गुरुजनों को, वैष्णव को, श्रील प्रभुपाद को, उनकी कृपा से संस्था के अंतर्गत हम भगवत गीता या भागवत और श्री चेतना महाप्रभु की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शरणागत भाव से कम जितनी देर के लिए आप भगवान की कथा कर रहे हो तब तक के लिए अपने आप को उनके हाथों में, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, और हृदय में उनकी स्फूर्ति करो, उनको प्रार्थना करो कि आप हमारे हृदय से में विराजमान होकर और हमारी वाणी के ऊपर कृष्ण का गुणगान जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कहो। ये एक हमारी ध्यान की पद्धति होनी चाहिए। तो प्रायः हम जो ये ध्यान करते हैं इसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम सारी परंपरा को प्रार्थना करके श्री गौरंगा महाप्रभु की कृपा से इस काम को शुरू करना चाहते हैं। तो अब दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना करने के बाद कि उसने आध्यात्मिक दीप, ये श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक दीप है, आध्यात्मिक दीप है, इसका मतलब अज्ञानता को दूर करने के लिए ये सूर्य के समान प्रकाशमय है। और उसका उसने जो प्रवचन किया था उस सुखदेव गोस्वामी से, उसी भागवत के अंतर्गत मैं इन ऋषियों को सर्व कल्याण के लिए सबसे उत्तम श्रेयकर साधन और सबसे अच्छा जो 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 लक्ष्य है जीवन का सुनाने के लिए बताने जा रहा हूं। और उसके बाद एक और मर्यादा का पालन करते हैं। इस श्लोक को हम भी रोज कहते हैं भागवत कहने से पहले, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। ये स्थान का देव नर नारायण जहां भागवत लिखी गई है उसको प्रणाम किया जा रहा है। तो वैसे भी आदि नारायण ने भागवत दी थी ब्रह्मा जी को, तो इस श्लोक की भावार्थ ऐसे सुंदर लिखा है चक्रवर्ती पाद ने कि कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र का एक ऋषि होता है, उस मंत्र का एक आराध्य देव होता है, उस मंत्र की एक शक्ति होती है। ऐसे ये भागवत रूपी भगवत जो भागवत रूपी ये महान ग्रंथ है इसका ऋषि व्यास है, इसलिए इसमें व्यास देव को पर नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम फिर देवीम सरस्वतीम व्यासम। व्यास ऋषि है जिसने भागवत को देखा, वैसे ऋषि का अर्थ है दृष्टा, दृष्टा का मतलब जिसने देखा है। हमने दो दिन पहले आपको बताया था भागवत के स्वरूप को समाधि ने में व्यास ने देखा, तो इसलिए व्यास भागवत का दृष्टा है और भागवत का आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है और भागवत की शक्ति सरस्वती है, तो इसलिए देवी सरस्वती लिखी है। और ऐसे भी सरस्वती के किनारे के ऊपर लिखा गया था जहाँ सरस्वती बहती है, तो इसकी शक्ति सरस्वती है। और फिर अंतिम जो लाइन है ततो जयम उदीर्यत, तो ये जो सबका कल्याण करने वाले भागवत की श्री कृष्ण की जय हो, ये सबकी जय करने वाला शास्त्र, सबकी जय करने वाले का मतलब सबको विजय प्राप्त कराने वाला। किसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला? माया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला भगवान श्री कृष्ण जो अजीत है, उस अजीत के चरणों में आपकी जय कराने वाला ये शास्त्र भागवत। ततो जयम उदीर्यत, इसलिए जय घोष करनी चाहिए कि ये भागवत हमारे को परम पद की प्राप्ति कराएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ऐसे कहना चाहिए, शास्त्र का ये नियम है। और ये कहने के बाद ये तो किया उन्होंने अपना इष्ट प्रार्थना की, अपने गुरुदेव को प्रार्थना किया, आशीर्वाद लिया। अब ऋषियों को संबोधन करके कहते हैं आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मुन्यः हे मुनिजनों साधु पृष्टो, आपने बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न कृष्ण के विषय में है और ये क्या करेंगे? येन आत्मा सुप्रसीदति, ये कृष्ण संबंधी जो आपके प्रश्न है, आपने तो सीधा पूछा है कि देवकी और वसुदेव के घर में कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, कौन कौन से उन्होंने कर्म किए और उनके अन्य अवतारों की लीलाओं का वर्णन करो। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आत्मा को बड़ा अद्भुत आनंद देंगे, आत्मा ये ना जिसके द्वारा आत्मा सुपरसीदति, आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा में आनंद का एक आप अभिव्यक अनुभव करेंगे, आपके प्रश्न धन्य है, आपके प्रश्नों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। और फिर पहले ही प्रश्न का उत्तर देते हैं प्रभुपाद जी, लिखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर है। तो पहले प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था, सबका एकांतिक श्रेय क्या है, प्रयोजन जीवन का क्या है मानव का, तो उसका उत्तर देते हैं, सवई पुंशान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय, अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्म सुप्रसीदति। ये पहले प्रश्न का उत्तर है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहली लाइन में लिख दिया है। परम धर्म, परम धर्म का मतलब ये है कि दुनिया में हो सकता है कि मजहब ज्यादा हो, और ज्यादा मजहब क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों के स्वभाव अलग अलग है, लोगों के स्वभाव बनते हैं तीन गुणों से, और तीन गुणों के आपस में मिश्रण होने से कई स्वभाव के लोग होते हैं, इसलिए कई स्वभाव के लोगों की धारणाएं होती है, और कई स्वभाव के उनके विश्वास होते हैं और श्रद्धा होती है, इसलिए अलग अलग धर्म हो जाते हैं। लेकिन परम धर्म एक ही है, परो धर्म, पुंश का मतलब मानव जाति का, पुंश का मतलब इंसान के शरीर धारण करने वाले, मानव शरीर धारण करने वाले जीव आत्मा का परम धर्म एक ही है। इसलिए प्रभुपाद जी जब धर्म की व्याख्या करते थे तो कहते थे इसका अर्थ मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है। संस्कृत में जो शब्द धर्म है उसका अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं। जैसे संस्कृत में शरणागति शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी में शब्द है सरेंडर, लेकिन सरेंडर तो जब कोई डंडा मारता है तब करता है, शरणागति अपनी इच्छा से ली जाती है, इसलिए शरणागति का शब्द का अर्थ अंग्रेजी में नहीं है। ऐसे धर्म के, धर्म का अर्थ भी अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। इसलिए विद्वान कहते हैं अंग्रेजी भाषा में श्रील प्रभुपाद ने कुछ अद्भुत नए शब्द को दिए हैं, अंग्रेजी भाषा को भी बहुत धनी बना दिया है, अद्भुत कुछ नए नए शब्द प्रभुपाद ने दिए, जैसे कॉन्शियसनेस, चेतना, ये शब्द भी अंग्रेजी भाषा में ऐसे नहीं है। तो बहुत से एक नए शब्द प्रभुपाद ने, धार्मिक आध्यात्मिक शब्द अंग्रेजी कोश में डाले हैं, ये प्रभुपाद की एक बहुत बड़ी देन है भविष्य में। तो धर्म का अर्थ मजहब नहीं हो सकता, रिलीजन नहीं हो सकता, क्यों कि रिलीजन तो बदलता है भाई। आज किसी कोई आदमी को प्रलोभन दिया जाए कि तुम्हारे को घर भी देते हैं, तेरी शादी भी कराते हैं, तेरे को नौकरी भी देते हैं, तो बोलते ठीक है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम आज जो है जीवन है, कल जान कर दो मेरे घर से क्या जाता है। तो ऐसे लोग, एक हमारे बहुत एक गांव में गरीब लोग रहते थे, तो एक बार हम गए तो मैंने बोला, तो उससे पूछा क्या नाम है भाई, तो मुझे कहा जीवन नाम है। तो 6 महीने के बाद मैं घूमने गया तो मैंने बोला भाई कैसे ठीक हो जीवन, बोला मेरा जीवन नाम नहीं है, मेरा नाम अभी जान है। अरे तुम तो 6 महीने पहले तुम जीवन था, अब जान हो गया। बोला जीवन से जीवन नहीं चल रहा था, इसलिए जान बन गया हूँ, तो जान में जान आ गई है। दो चार भाई मेरे को 1000 रुपया महीना आता है, वो खर्चा भी देते हैं, और जो है मेरे बच्चे को नौकरी भी लगा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा भी रहे। फिर 6 महीने के बाद गया तो बोला जान मोहम्मद मेरा नाम। अरे तो तू जान था, बोला जान से नहीं काम चला, अब मैं जान मोहम्मद हूँ, क्योंकि यहाँ रहता हूँ, मुझे डंडे मारते हैं, इनकी बात नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैंने। तो ये तो 6-6 महीने के बाद आदमी मजहब तो बदलते रहते हैं, तो ये धर्म नहीं हो सकता है, ये तो फेथ है जो बदलता है। भारत के अंदर अभी जितने लोग जो अपने आप को ईसाई मानते, क्रिश्चियन मानते हैं या मोहम्मदन मानते हैं, ये कोई बाहर अंग्रेज आए नहीं है पाश्चात्य देश से, और न ही कोई मोहम्मदन कोई मक्का से आए, ये तो सब यहीं थे बेचारे, और घूम फिर के कोई जान बचाने के लिए और कोई जान को चलाने के लिए नाम बदल के बैठे, और तो कुछ भी नहीं किया है। कोई सिद्धांत के कारण के वहाँ भगवान प्राप्त हो जाए इसके लिए बदले हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो धर्म ये नहीं हो सकता है। तो धर्म शब्द की व्याख्या है जिसके जिसके आधार के, जो जीव का जीव जिस आधार के ऊपर टिका हुआ है वो धर्म है, और जो बदल नहीं सकता है, उसमें परिवर्तन आया लाया नहीं जा सकता है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आग का धर्म है गर्मी देना, आग का धर्म है प्रकाश देना, कोई चीज़ प्रकाश भी नहीं दे और गर्मी भी नहीं दे तो उसको आग नहीं कह सकते। अथवा चीनी का धर्म है मीठा होना, तो अगर कोई सफ़ेद चीज़ सबको चीनी नहीं कहेंगे, जो मीठा होगा उसी को चीनी कहेंगे, तो मिठास चीनी का धर्म है। उष्णता अग्नि का धर्म है, प्रकाश अग्नि का धर्म है, बहना जल का धर्म है, जो बहता है प्यास बुझाता है उसी को जल कहते हैं। ऐसे जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म प्रेम और सेवा है, और ये धर्म सब जीवों का है। मानव तो मानव, नीचे जूनियों तक सबका एक ही धर्म है, प्रेम और सेवा करना। अब बताइए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम नहीं करता हो? कोई ऐसा जीव है जो सेवा नहीं करता हो? ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में है जो सेवा या प्रेम नहीं करता हो? भाई हम किसी से तो प्रेम करते हैं, अपने माँ से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने धंधे से प्रेम करते हैं, पैसे से तो सभी प्रेम करते हैं, हाँ, देश से प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं। प्रेम से कोई हृदय खाली नहीं हो सकता। कोई हृदय प्रेम से खाली है दुनिया में? प्रभुपाद जी लिखते हैं जब कोई प्रेम करने के लिए नहीं बचता है तो कुत्ता बिल्ली पाल के उससे प्रेम करके काम चलाते हैं लोग, हाँ। तो प्रेम से कोई हृदय खाली नहीं है, और सेवा भी सबको करनी पड़ रही, किसी न किसी की सेवा करता है, अपने शरीर की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, और फिर जो जिसका जो खिलाता है उसकी सेवा करनी पड़ेगी, कमाने के लिए सेवा करनी, मालिक की सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा से भी कोई इस संसार में तो छोटी चिड़िया होती है, वो भी एक दाना ले जाके अपने बच्चे को खिलाती है, कुतिया भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये सेवा और प्रेम जीव का सनातन धर्म है। बस जिस जिस की सेवा कर रहे हैं, जिस जिस से प्रेम कर रहे हैं इस संसार में, वो समय के साथ या तो हमारा साथ छोड़ देता है या हमारे से धोखा करता है। इसलिए हमारी सेवा हमेशा असफल रहती है और हमारे प्रेम में हमेशा हम दुखी होते हैं। इस दुनिया का प्रेम और सेवा सदा के लिए अंत में दुखी देते हैं। पिता से बहुत मेरा प्रेम था लेकिन काल ने छीन लिया, मर गया, तो अब दुखी हो गया कि नहीं हो गया? जिसकी मैं सेवा कर रहा था, मैं मालिक की सेवा कर रहा था, मैं बूढ़ा हो गया, मालिक ने तनख्वाह देना बंद किया, मैंने सेवा बंद कर दी, अब मैं दुखी हुआ कि नहीं हुआ? तो सेवा जिसकी भी दुनिया में करोगे, प्रेम जिससे भी दुनिया में करोगे, क्योंकि आप सनातन हो, आपका स्वभाव सेवा और प्रेम का सनातन है, और आप जिससे कर रहे हो वो शरीरों की कर रहे हो, तो इसलिए वो तो सनातन है नहीं, इसलिए आप कभी भी अंत में सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रेम और सेवा किसको करनी, किसकी करनी चाहिए? अधोक्षजे, जो इंद्रियों से परे है। अधोक्षजे भगवान का वो नाम है जिसका अर्थ है तुम्हारे इंद्रियों से, दूसरे इंद्रियों वालों की सेवा करोगे तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। आप अतिंद्रिय की सेवा करो, जो इंद्रियों का स्वामी है उसकी सेवा करो। इंद्रियों का स्वामी तुम्हारी सेवा से संतुष्ट होगा, तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम सुखी हो जाएगा, तेरा आत्मा, आपका आत्मा आनंदित हो जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसके सेवा और प्रेम से वो संतुष्ट होगा। इसलिए परोधर्म का अर्थ है, वो परधर्म क्या है, वो दूसरी लाइन में कहते हैं भक्ति, वो परम धर्म भक्ति है। इसलिए एक हमारा मित्र है, वृंदावन में, छगन लाल उसका नाम है, उसने डॉक्टरेट किया है, डीलिट किया है पीएचडी के बाद, और उस डीलिट का उसका सब्जेक्ट है सब मजहबों में सब रिलीजन में धर्मी भक्ति मुख्य है उसका जो टॉपिक था। पहले उसने पीएचडी की थी बृहदभागवत अमृत में सनातन गोस्वामी के, उसके ऊपर उसने पीएचडी की और डीलिट किया कि सभी मजहबों में सभी रिलीजन में भक्ति मुख्य है, भक्ति सबके अंदर है। तो इसलिए पर धर्म क्या है मानव का, मतलब श्रेयकर क्या है सब मानव के लिए, भक्ति। कैसी भक्ति, प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, जिसके द्वारा आपके हृदय में जो सेवा और प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाए। तो श्रेयकर धर्म है भगवत प्रेम, और वो जो साधन जगाए, श्रेयकर सबके लिए है भगवान का प्रेम, लेकिन उसको जगाने के लिए जो साधन है वो साधन है भक्ति। तो भक्ति पर धर्म क्या है, शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या कहते हैं, अहितुकी। इसलिए नहीं करनी चाहिए भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम कि भगवान से कुछ पाना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जितने धार्मिक लोग हैं कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं मंदिर में सबसे जाके पूछ लो, एक ही सबका उत्तर, 99% लोगों का उत्तर आएगा कुछ पाने के लिए जाते हैं। क्या कुछ पाने के लिए जाते हैं, सुख। किसका, इंद्रियों का। रोग निवृत्ति के लिए जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं, धन प्राप्ति के लिए जाते हैं, पुत्र परिवार के लिए जाते हैं। अरे लेने जाते हो, कुछ देने भी जाते हो कि नहीं, भगवान ने क्या नहीं दिया है आपको, कितनी सुंदर काया दी है, इतना सुंदर आपका रूप भगवान ने दिया है, जिसका एक अंग भी लाखों रुपये खर्च करके बना नहीं सकते हो, एक बाल भी निकल जाए दोबारा वैसा लगाने में करोड़ों रुपये तो नहीं लग सकता, इतनी सुंदर काया जिसने दी है, और कितना सुंदर आपका ये चेहरा बनाया है, विचार करो, दो आंखें ऊपर दे दी, इसके नीचे आंख, इसके नीचे मुख दे दिया, कि खाना आए तो पहले आंख से देखो कि इसके अंदर मक्खी तो नहीं पड़ी है, फिर नाक तक जाते सूंघो कि कल का पुराना नहीं है, फिर मुंह में डालो। अगर आंख दी होती पीठ के ऊपर और नाक दिया होता घुटने में तो खाना लेके ऐसे आरती करनी पड़ती है। कितना सुंदर शरीर दिया है, पहले इसकी बनावट को देखो, इसका एक अंग नहीं बना सकते हो, कितनी कृपा की है उसने, अभी और मांगने जाते हो भिखारी हो, क्या नहीं दिया है। एक लड़का था नदी के किनारे बैठा था दुखी बहुत, महात्मा ने कहा क्यों चलो भगवान का भजन करो, कथा चल रही है, मंदिर में चलते हैं, बड़ा क्या दिया है भगवान ने, कुछ नहीं दिया है, गरीब हूं, दरिद्र हूं, कॉलेज में पढ़ता हूं, एक लड़की से प्रेम हो गया, मैंने विवाह के लिए, क्या उसके बाप ने कहा तुम तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मैं नदी में कूद के मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा बेटा आप तो मरने ही जा रहे हो, भगवान ने कुछ नहीं दिया है, मेरा एक शिष्य है बेचारा, उसकी एक आंख खराब है, मरते मरते तुम आपकी एक आंख दे दो 5 लाख रुपया तुमको दिलाता हूं। तो बोला महाराज मरता हूं लेकिन काणा होके तो नहीं मरूंगा, आंख नहीं निकाल के दूंगा। बोला कोई बात नहीं, आंख देखने में आती है, तुम्हें डर लगता है, दूसरे एक मेरे भक्त का गुर्दा खराब हो गया है बेचारे का, एक किडनी दो तुम्हारे को 10 लाख रुपये दिलाता हूं। बोला महाराज पेट में नहीं कटवाऊंगा। तब महाराज ने कहा मूर्ख 5 लाख की एक आंख, 2 आंख 10 लाख की, एक तुम्हारी किडनी 10 की, 2 20 की, करोड़ों का तो मैं तुम्हारे को कहूंगा तेरा शरीर है, तुम कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया है, तुम्हारा शरीर कितना कीमती है, तुम मूर्ख हो क्या। रोज पे सब रोज सबको भोजन दे रहा है। हाथी को 1-40 किलो चाहिए रोज मिल रहा है जंगल में, कहीं मजूरी नहीं करता है हाथी। केवली को 1 दाना रोज मिल रहा है, कितनी बड़ी कृपा उसने की, फिर भी मांगने जाते हो। और मांगने का तुम्हारा तरीका भी क्या है, भगवान हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरा बेटा मेडिकल में सिलेक्ट हो गया तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा। वो भी पोस्ट डेटेड चेक हो गया तो चढ़ा के जाऊंगा। 100 रुपये में कोई डॉक्टरी होती है क्या? बेटा भगवान मिल गया, एक हमारा पोता आ गया तो 125 रुपये का प्रसाद चढ़ा लूंगा बाद में, सब वो भी फ्यूचर टेंस में। मांग रहा है करोड़ों की चीज और दे रहा है 100 रुपये, इसको बोलते हैं कुत्ता दे के हाथी मांगना। इसलिए धर्म के नाम में व्यवसाय हो रहा है। लोग मंदिर में भी ऐसे आ जाए आते हैं जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट भगवान के सामने रखते हैं और क्रेडिट कार्ड खाली होता है वो दिखा के चले जाते हैं, कुछ भी देने की इच्छा नहीं होती है, लिस्ट इतनी बड़ी लंबी दे के जाते हैं, ये भी भगवान, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये धर्म नहीं है, इससे इंद्रिय तृप्ति होती है। ये कर्म कांड के अंतर्गत भगवान से कुछ मांगने से शरीर का सुख होता है, इंद्रियों की तृप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उससे थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, लेकिन आत्मा का आनंद तब मिलेगा जब वो सक्रिय सेवा में लगेगी, और जिसकी सेवा में लगे वो कभी उसको धोखा न दे और वो कभी समाप्त न होने वाला हो, यो शाश्वत हो, सदा रहने वाला हो, सनातन हो और प्रेम करने वाला हो। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, भगवान कहते हैं आप मेरे बीज, मैं आपका पिता हूं। और हम भी रोज कहते हैं भगवान को, वेदों का मंत्र, तुम्हें वो माता च पिता, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। पहले देखो माता भगवान को संबोधन वेद में किया है, तुम माता हो भगवान को कहा है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण उस माता भगवान का, जो माता का स्वरूप है उसको प्रार्थना है कि माता बड़ी दयालु होती है, बड़ी करुणा होती है माया माता के हृदय में, इसलिए उसको प्रार्थना की गई है। वो हमसे प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है, और हमारी संतुष्टि केवल तब होगी जब हम वापस उसके साथ प्रेम का प्रदर्शन करेंगे, प्रेम का व्यवहार करेंगे। और कोई चीज़ हमको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। आप क्या दे सकते हो भगवान को, आपके पास है क्या, आप लाए क्या थे अपने साथ जो भगवान को दोगे? जो कुछ लिया है आपने यही भगवान का दिया हुआ है, आपका अपना तो कुछ भी नहीं। खाली इस दुनिया में बगैर कपड़े के नंगे आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, कहाँ से ला के दोगे? तो भगवान को देना है तो केवल प्रेम देना है, और भगवान की सेवा करनी है तो प्रेम से करनी है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान पूछ मांगते क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता तुलसी का दे दो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। 2 बार प्रेम का शब्द इस श्लोक में आया है। तो भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, ये आत्मा को ये अहितुकी होनी चाहिए। बात कर रहे थे अहितुकी, अहितुकी का मतलब किसी उद्देश्य से नहीं किया जाए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाए, केवल आत्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए। और आत्मा तब प्रसन्न होगी जब भगवान प्रसन्न होगी। भगवान की प्रसन्नता से जैसे पति प्रसन्न हो जाए तो पत्नी अपने आप घर में प्रसन्न हो जाएगी, सब कुछ वो घर में ला के दे देगा, अलग उसको प्रसन्न होने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भगवान की प्रसन्नता हमारे आत्मा के सुख का एक ही साधन है और कोई साधन नहीं है। मन इंद्रियां शरीर से सुख दुख का अनुभव होता है और वो बदलते रहते हैं, मन से शांति और अनशांति का अनुभव होता है वो भी बदलते रहते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव केवल आत्मा से होता है, और आनंद कभी आनंद में परिवर्तित होता ही नहीं है। आनंद का विपरीत शब्द है ही नहीं। आनंद केवल बढ़ेगा, आनंदम बुद्धिवर्धम प्रतिपदम प्रणाम आर्दम, आनंद तो एक एक पद पद के ऊपर बढ़ेगा, आनंद कम हो ही नहीं सकता है। आनंद आत्मा के स्तर पे अनुभव किया जा सकता है, शरीर के स्तर के ऊपर सुख दुख का अनुभव होता है, मन के स्तर के ऊपर शांति अशांति का अनुभव होता है, लेकिन आनंद का अनुभव आत्मा के स्तर के ऊपर होता है। और यहाँ आत्मा की प्रसन्नता तब होगी जब भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं, जो सब चीज़ें हमको बगैर मांगे दे दी हैं, जो चीज़ हमारे जीने के लिए ज़रूरी है उसके लिए एक रुपये का खर्चा हमको नहीं करना पड़ता है, सांस लेने के लिए हवा मुफ्त में सबके लिए है, काला गोरा हो, चोर हो, बदमाश हो, चाहे साधु हो, मुफ्त में सबके लिए भगवान ने दे दिए। बहुत महंगे से महंगा जो सौदा है वो हवा है, और ये हवा 24 घंटे हमको चाहिए, 2 मिनट भी जीवन नहीं रह सकते, और मुफ्त में सबके लिए भगवान ने प्रवाहित की है कि नहीं की है, क्योंकि हमसे प्रेम करता है इसलिए सबको प्रवाहित की। कितनी महंगी चीज़ है जो अस्पताल में दाखिल होता है और ऑक्सीजन का, जिसको 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन लगती है तो उसका बिल आता है, उसका हिसाब करके 24 घंटे का बिल अगर देना पड़ जाए तो एक भी सेठ इस दुनिया में न रहे, सबका देवाला निकल जाए। हाँ, 24 घंटे में कितना। और आप आज सुन लीजिए, ये समय दूर नहीं है कि रास्ते में सांस फूलेगा, क्योंकि हमने इतना वायु को प्रदूषित किया है कि जगह जगह के ऊपर ऑक्सीजन पार्लर लगे होंगे, 500 रुपया दो, आधा घंटा जाके लंबे लंबे अंदर सांस लो। ये दूर नहीं है समय, अभी भी कहीं आ ही चुका है। कभी पानी की बोतल बिके थी, आपने कभी सोचा था पानी की बोतल खरीदेंगे 10 रुपया में? कभी नहीं हमने सोचा था। हमारी उम्र के लोग तो ऐसे जाके नलके के ऊपर से पानी नल से पी लेते थे, कोई खर्चा लोटा गिलास उसका भी खर्चा नहीं करते थे, सीधा सा ऐसे हाथ में पानी पिया। भगवान ने दिया, भागवत में लिखा है कि इतना हाथ दिया है, हाथ भगवान ने दिया है, फिर तकिए का खर्च काय के लिए करना, इसके ऊपर सो जाओ। तो ये सांस लेना भारी पड़ेगा आगे चल के, जितना हम ये काला धुआं उठा फैक्ट्री से और गाड़ियों से चारों ओर कर रहे हैं, ये सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा। तो कितना, एक तो लोग, एक कितनी गलत धारणा लोगों ने एक चारों ओर चलाई है कि पानी खत्म हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, पानी समाप्त हो जाएगा। आपको ये डर लगता है कि पानी कभी समाप्त हो जाएगा? हाँ, क्यों? महंगा तो है, 10 रुपया किलो लेके पी रहे। प्रभुपाद ने कहा कि समुद्र के अंदर भगवान ने नमक डाल के कभी खराब ना हो, और 3/4 पानी धरती के ऊपर इतना रखा है कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र कभी सूखेंगे क्या? नहीं सूखेंगे तो पानी कैसे खत्म होगा? आपको मीठा पानी तब मिलेगा जब भगवान की भक्ति करोगे, तो ये खारा पानी भगवान ऊपर उठा के बरसात के रूप में बरसाएगा और आप पीना, नदियां बहेंगी, खेतों में जाएगा अन्न खाना, और नहीं करोगे भक्ति तो बरसात तब आएगी जब आपका अन्न थोड़ा ऊपर होगा, उसको गिरा के तबाह करके चली जाएगी, और जब नहीं चाहिए तब बरसात आएगी, और जब चाहिए बरसात तब तूफान आएगा। इसलिए भगवान का भजन कर लो, भक्ति कर लो, तो कभी किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। तो ये भगवान प्रेम के कारण हमारे लिए हवा का व्यवस्था किया, जल का व्यवस्था किया, धरती से अन्न का व्यवस्था किया। अन्न का एक दाना की भी किसी फैक्ट्री में आज तक नहीं बना है, धरती से उपजाय होता है, धरती देती है, एक हज़ार दाना दे देती है 3 महीने में, इतना रिटर्न कोई बैंक नहीं दे सकती है जो ये धरती देती है। थोड़ा मेहनत करो तो अन्न ही अन्न देती है। ऐसी मशीन भी दुनिया में आज तक नहीं बनी है। घास डालो, सब्जी के पत्ते डालो और सुबह दूध निकालो गाय, ऐसी मशीन बनी है दुनिया में। आपकी सब्जी के उसमें पत्ते डालो, दूसरे दिन दूध निकले। ऐसे अभी विज्ञान ने कुछ प्रगति की है क्या? नहीं की है ना। भगवान ने कितनी सुंदर मशीन बनाई है कि घर में सब्जी काट के बाकी जो छिलके विलके बच्चे वो भी दे दो, घास दे दो, सुबह दूध ले लो। इतनी बड़ी सुंदर भगवान ने गाय कितनी सुंदर बनाई है कि अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और भगवान के बच्चों को भी दूध पिलाती है। गैया मैया है, और 8 माताओं में गाय को हमारे वेद ने माता का स्थान दिया है। अब वो माता गली गली में बेचारी प्लास्टिक खा रही है, तब उस पुत्र को धिकार हो के नहीं हो, और उस माता को मूर्ख दूध निकाल नहीं सकते हैं और गला काटने के लिए ले जाते हैं और हम आंखों से ये देखते हैं, ये बहुत दुख का कारण है। और ये धर्म की इस भूमि में हो तो यहाँ रहने वाले वालों को धिकार है, इसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मूर्खता है कि पशु किए बढ़ जाएंगे फिर कौन पालन करेगा। आज तक दूसरे क्यों जूनी में कोई बढ़ा नहीं है, गाय क्यों बढ़ जाएगी, कुत्ता तो बढ़ा नहीं तुम्हारा, जिसको घर में पालते हो बाप के समान, ऊपर पलंग पे बिठाते हो। तो ये बहुत बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा सुंदर एक भगवान ने गाय की सृष्टि की है, और वो समुद्र मंथन से निकली थी जिससे लक्ष्मी निकली थी। समुद्र मंथन से तीन रत्न मुख्य निकले थे 14 में से, एक कामधेनु गाय निकली थी जो ऋषियों को दी थी ब्राह्मणों को, ताकि ये इससे घी निकालेंगे, यज्ञ करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान प्रसन्न होगा तो सारा संसार सुखी होगा। लक्ष्मी इसलिए निकली थी कि सबका भरण पोषण लक्ष्मी करेगी, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और अमृत निकला था जो देवताओं को दिया गया था, लेकिन मुख्य गाय समुद्र मंथन से निकली हुई है। तो इस इतनी अद्भुत भगवान की ये सृष्टि, जो मानव को माँ की समय पालन पोषण करते हैं, और ये बेल पिता की समय अन्न की उत्पत्ति करता है, जैसे बाप कमा के लाता है तब बच्चे खाते हैं, ऐसे ये खेत के अंदर अनाज पैदा करता है पसीना बहा के, तब सब संसार खाता है। तो ये इन दोनों बैल का धर्म का रूप है, बैल धर्म है। एक हमारी गौशाला देखता है वृंदावन में, जर्मन भक्त है सनक सनातन, वो मुझे एक अनुभव बता रहा है। गाय बछड़ी को जन्म देते हैं, ग्वाला खुश होता है, बछड़े आने के ऊपर दुखी होता है, और स्त्री लड़के को जन्म देती है तो माँ खुश होती है, लड़की आती है तो दुखी होती है। ये इतना विचित्र दुनिया में है, धर्म के आने के ऊपर हम दुखी होते हैं, इसका मतलब बैल तो धर्म है ना, तो धर्म के आने के ऊपर हम दुखी क्यों होते हैं। और कन्या आपका सबसे बड़ा धन है, उसको कहते हैं कन्या दान। आपको भगवान ने इतना धन दिया जो आप दान करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किसी सतपुरुष को दे दो, कोई साधु जन्म ले ले और दुनिया के अंदर प्रचार कर ले, तो आपका वो कितना बड़ा दान है। और बच्चे ये बदमाश सब कुछ शादी के बाद लूट के चले जाएंगे, उनके आने के ऊपर खुश होके क्यों टाइम खराब कर रहे। सबसे बड़ा डाकू जो दिन धाड़े सब कुछ लूट के जाए वो आजकल का लड़का है, सब कुछ माँ बाप का लूट के शादी के बाद 6 महीने में सब उठा के चला जाता है, फिर देखने को भी नहीं आता है। ये सबसे बड़ा बदमाश पहले नंबर का इस वक्त धरती के ऊपर डाकू ये। एक बूढ़ा था, सत्संग में आता था, फैक्ट्रियां थी, 3-4 बच्चे थे। एक दिन हमने पूछा, बाबूजी कितनी उम्र होगी, बोला 6-7 साल है। अरे दांत है नहीं, 7 साल क्यों, 60 तो कम से कम बोलो। नहीं बोला, 7 साल है, जिद करके बैठ गया। मैंने बोला आपके पास फैक्ट्री घर दुकान धंधा, बोला 11,000 रुपया मेरे पास संपत्ति। 11,000 क्या, 11 करोड़ का तो तुम्हारा फैक्ट्री और ये दुकान और मकान है। बोला नहीं, मेरे पास 11,000 ही है, मेरे वही है। अरे पुत्र कितने, एक ही बच्चा है। अरे 4 तो हम जानते हैं तुम्हारे, 2 दुकान पे, 1 फैक्ट्री पे, 1 वहाँ। तो हमने पूछा झूठ क्यों बोल रहा है, उसकी पत्नी से पूछा काका क्या बोलता है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो पूछा उसने, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बोला मैं सच बोलता हूँ, ये 7 साल से मैं सत्संग में जाता हूँ, अभी मैं भगवान की भक्ति करना शुरू की है, इतनी ही मेरी उम्र है, बाकी तो सारी बेकार में चली गई, किसी काम की नहीं है, उसको गिन के क्या करूँ, वो तो बेकार भोग में चली गई। यही तो 7 साल मैंने अपने जीवन में किसी साधु के संग से भक्ति की है, तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं फैक्ट्री दुकान। बोला 11,000 मैंने अपने हाथों से भगवान की सेवा में दान दिया है, ये मेरा है, बाकी मरने के बाद कौन खाएगा मुझे क्या पता। भाई मैं उसको अपना मानूं लेकिन मेरे जाने के बाद वो मेरा तो नहीं होगा। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक राजा जिसकी चार रानियां थी, तो एक रानी उसमें से जो कंचन थी उसको जब राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो तो उसने क्या जवाब दिया था, तेरे मरते ही दूसरे से शादी कर लूंगी। और ये धन है हमारे जाते ही दूसरे का हो जाता है, तो बोला फिर तो चार बच्चे हैं एक क्यों बोलते हो, बोला एक तो मेरी सेवा करता है और तीन इंतजार करता है कि मैं मरूं कब जब सामान बांटे। तो ये स्थिति है कि सत्य धर्म के ऊपर चलने के लिए कितना आपने समय लगाया उतना ही काम का है। वैसे भी 100 साल अगर जिंदगी भी हो तो 5 बचपन में चले गए, 30 सोने में चले गए, 5-6 लाइनों में टिकट लेने में चले गए, जिंदगी तो बेकार में सारी चली गई। जीने के लिए कोई 10-20 साल मिलते हैं वो भी भगवान का भजन नहीं करें तो करेंगे क्या। बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी मौज उड़ाने में चली गई, बुढ़ापे में हाथ पांव चलते नहीं है, तो कब भगवान का भजन करोगे, कब भक्ति करोगे। तो तुम कुछ मांगो मत, अहितु की भक्ति करो, क्योंकि भगवान ने इतना तुमको दिया है, अब कुछ मांगो मत, बस भगवान की प्रसन्नता ही तुम्हारी भक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए। और किसी कारण से वो भक्ति रुके नहीं, अप्रतिहिता, जब तक काम ठीक चल रहा है तब तक भगवान के आगे पीछे घूम रहा है, नाच रहा है, अगर कहीं थोड़ा दुख तकलीफ आ गई तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, फिर भगवान को छोड़ के फिर इधर से उधर दूसरी जगह भटकना शुरू कर दे, ऐसी भक्ति नहीं, उसको भक्ति कहते ही नहीं है। ये तो शिक्षाष्टम का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, भगवान आप आलिंगन करो या मेरे को लात मार के निकाल दो, मैं आपका दरवाजा छोड़ने वाला नहीं। आशलीशवा पात्रतान पनिष्ठो भाव मरमताम करो तुम यथाता तथा विद्यातो मत लंपटो मत ना मत प्राण नाथस्त नाई ऊपर, हमारे प्राण नाथ हो आप, चाहो तो गले लगाओ चाहो तो धकार दे दो, बात करो न करो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो आपका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, आपकी सेवा में लगे रहेंगे। इतना दृढ़ संकल्प हो, उसके रुकावट का कोई कारण न हो, किसी कारण से भक्ति रुके नहीं, वो गंगा की अविचल धारा की तरह बहती रहे, उसमें कहीं रुकावट नहीं आए, वो भगवान की ऐसी ये जो प्रेममयी सेवा है भगवान की, ये सब जीव कर सकते हैं और ये सब जीवों का जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल इसको जगाने के लिए साधु के संग की जरूरत है, इसको जगाने के लिए साधु के संग की जरूरत है, और साधु की सेवा करेंगे तब ये भक्ति जागृत होगी, ये आगे इन श्लोकों में आएगा। तो ये जो श्लोक है परम धर्म जो शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी ने यहाँ, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय व्हिच मैन कैन अटेंड द लविंग प्रेममयी सेवा भगवान की। कैसा भगवान? दिव्य ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। ऐसी भक्तिमयी सेवा, उसमें कोई भी अनमोटिवेटेड कोई भी कारण न हो, अकारण सेवा हो, और उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं पड़े, रुकावट नहीं हो, कभी करे कभी नहीं करे ऐसे नहीं, तो वो पूर्ण रूप से आत्मा को संतुष्ट करके आनंदमय करेगी। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं साधन क्या है। साधन है वासुदेव भक्ति, वासुदेव भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। साधन है भगवान वासुदेव की भक्ति योग, वो भगवान वासुदेव की भक्ति योग जब शुरू करेंगे तो साधन भक्ति होगी, और साधन भक्ति करते करते अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा, अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कहीं और से जाके प्रेम लाने की जरूरत नहीं है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्य आसु। अच्छा, आप भगवान का प्रेम करना चाहते हैं, अपने जीवन के उत्तम श्रेय को प्राप्त करने चाहते हैं, तो उसका साधन है भगवान वासुदेव की भक्ति। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो पता कैसे लगे कि आप भक्ति कर रहे हो, उसका फल क्या है, अथवा उसके आपके अंदर क्या परिवर्तन आएगा जिससे पता लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हो। तब कहते हैं आप भक्ति करना शुरू करोगे तो भक्ति जन्म देगी। किसको जन्म देगी? एक वैराग्य को जन्म देगी। भक्ति एक जन्म देगी वैराग्य को। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग का अर्थ है विशेष राग। विशेष राग का अर्थ है भगवान में बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाए, उसको वैराग कहते हैं। और भगवान में आकर्षण विशेष हो जाएगा तो 2-3 घंटे आप मंदिर में आओगे, भगवान की कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, तो वो 2-3 घंटे आपका संसार से अपने आप वैराग हो जाएगा। क्योंकि भगवान में राग हुआ तो उसका परिणाम अपने आप वैराग हो जाएगा। तो वैराग का अर्थ कुछ छोड़ना नहीं है, वैराग का अर्थ है विशेष भगवान से। कौन से भगवान? नाम लिखा है वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो। एक शब्द अनुराग होता है, अनुराग मतलब जो पहले प्रेम करने वाले हैं उनके पीछे खड़े होके उनकी सहायता करो भगवान की सेवा में, तो आपका अनुराग हो जाएगा और फिर आपको वैराग उत्पन्न होगा। विशेष भगवान में आपका राग होगा। अब संसार में राग है, वो भगवान की तरफ मुड़ जाए तो उसको वैराग कहते हैं। तो वैराग अपने आप वैराग हो जाएगा, भक्ति करने से अपने आप वैराग हो जाएगा। मतलब भगवान में तो प्रेम होने लगेगा, भगवान की सेवा में आनंद आने लगेगा, भगवान की कथा में संतुष्टि होने लगेगी, भगवान के कीर्तन में हृदय में प्रफुल्लता आएगी, मधुरता आएगी, तो ये वैराग की पहचान है। और फिर 4-5 घंटे तो कथा कीर्तन में लगेंगे, उतना देर संसार से अपने आप कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना, कुछ अच्छा पाओगे तो कुछ खराब छूटेगा अपने आप, उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम प्रचार में कभी नहीं कहते हैं भक्तों को कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, हम कहते हैं तुम अपना समय भगवान के साथ जोड़ो, तुम भगवान का नाम जपने शुरू करो। बस ये नाम जपने से जो भी नहीं काम की चीज़ें हैं आपको छोड़ के चले जाएंगी, आपको उसको छोड़ने के लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सेपरेट एंडेवर नहीं कि ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, नहीं, आप एक काम करो बाकी काम अपने आप होने लगेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रयोग करके देखा है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट संसार में प्रभुपाद जी ने किया, उन लोगों के ऊपर किया जो न तो भारतीय मूल के थे, न ही वो वैदिक बैकग्राउंड उनका था, वो तो पाश्चात्य देश के थे, धर्म कर्म को जानते नहीं थे, शास्त्र भगवद गीता भागवत से तो परिचित भी नहीं थे। उनको प्रभुपाद ने सिर्फ कहा आओ कीर्तन करो, और कीर्तन में बस मैं कहता हूँ आप पीछे गाते जाओ। केवल उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन शुरू किया और उस कीर्तन से उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि जिसका कीर्तन करते कर रहे थे उसमें तो प्रेम जाग गया, उसकी तरफ तो सेवा का भाव जाग गया, और जो बुराइयाँ जिसमें वो अच्छी तरह से लिप्त थे, नशे में लिप्त थे, धुत थे, दुनिया का कोई बुराई नहीं है जो उनके पास नहीं हो, लेकिन अपने आप सब कुछ छोड़ के चले गए, थोड़े दिनों के बाद वो साधु बन गए। तो लाखों लोगों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रयोग करके देखा गया है, आप नाम जपना शुरू करोगे तो भगवान अपना काम करना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, भक्ति शुरू होती है श्रवण से। पहले भक्तों के संग में भगवत कथा सुनना शुरू करो, फिर कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करना शुरू करो, सब जो अनवांटेड थिंग्स है, जिनकी आवश्यकता नहीं है जीवन में, जो हमारे लिए दुख का कारण है, वो अपने आप आपको छोड़ के चले जाए। इसलिए वो चैतन्य चैतन्यमृत का ये श्लोक, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। भगवान सूर्य के समान है, माया अंधकार है, जब सूर्य आ जाएगा तो अंधकार कहाँ से रह सकती है, तो माया कुछ नहीं कर सकती है। फिर अधर्म के सारे काम अपने आप आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप धर्म के रास्ते पे, कौन से धर्म? परधर्म के रास्ते, परम धर्म के रास्ते पे, कृष्ण प्रेम के भक्ति के रास्ते पे चले हो, तो बाकी जो अधर्म के कार्य हैं, जो धर्म को नाश करने वाले चार कार्य हैं, जो धर्म के स्तंभों को जड़ से उखाड़ने वाले चार कार्य हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये किसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो भक्ति करने से देखने में आपके जीवन में आएगा वैराग, और दूसरा भक्ति किसको जन्म देती है, ज्ञानम च तद अहितुकम, भगवान का ज्ञान। कौन सा भगवान का ज्ञान? ये वो भगवान का ज्ञान नहीं आत्मा शरीर का, भगवान के रूप गुण लीला का ज्ञान। ये आपके हृदय में अहितुकी, ये भगवान की कृपा से आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवत ज्ञान प्रकट होने लगेगा और भगवान से प्रेम बढ़ने लगेगा और संसार के बंधन अपने आप छूटने लग जाएंगे। एक भक्ति साधन है जिससे परम सारे शास्त्रों का एक ही सार है कि भक्ति करो, और भक्ति वासुदेव भगवान की करो, श्री कृष्ण की करो, और आप अपने जीवन में नापदंड देख लो कि आपको कृष्ण संबंधी कितना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है और कितना कृष्ण में आसक्ति हो रही है और संसार से विरक्ति हो रही है। ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आप थोड़े समय के बाद आपके जीवन में ये सब चीज़ें अपने आप प्रकट होंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति का फल है। तो पुत्र या फल में कुछ समय लगेगा, 9-10 महीने, लेकिन तब तक ये भक्ति करोगे तो ये प्रकट होंगे अपने आप। तो ये दूसरा साधन क्या है, भगवान वासुदेव की भक्ति, और वो भक्ति जो है ये दो फल दे, जो इसके दो फल हैं वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऋषियों, मानो ऋषियों ने ऐसे पूछ लिया है, अगर ये पूछ ले कि भक्ति के अलावा लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हों, लोग अपने मर्यादाओं के अनुसार रहे हैं, वो जो भी देवी देवता है उसकी रोज नेम से पूजा कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो इनको इनका क्या होगा? आप तो कहते हैं एक ही सारे शास्त्रों का सार है, लोग तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तब ये श्लोक कहते कहते हैं सूत गोस्वामी, धर्म संस्थित पुनशाम विश्वकेशेन कथासु कथासु यह न उत्पादते यदि रति शर्म एवहि केवलम। इसका अर्थ है आप जो भी धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे वर्ण आश्रम धर्म हो, चाहे नीति जाति धर्म हो, चाहे कोई पूजा पाठ की विधि विधान हो, उन धर्मों के फल स्वरूप अगर भगवान वासुदेव की कृष्ण की कथा में अगर रति उत्पत्त नहीं हो रही है, तो फिर वो बेकार की मेहनत है, वो तो भूसा कूटने के बराबर है, जिसके अन्न के अंदर से अंदर अन्न है ही नहीं तो हाथ क्या आएगा। तो बाकी सारे धर्म का आचरण अगर आपके हृदय में, हमारे हृदय में भगवत कथा में रति, रति शब्द का अर्थ आता है, रति शब्द का, रति नाम है कामदेव की पत्नी का, रति कामदेव की पत्नी है, इसका मतलब काम के विषय के भोग में आदमी जैसे घंटों बात करता है, कभी थकता नहीं है, और फिर उसी को करने के लिए उसके मन में इच्छा उठती ही रहती है, ऐसे भगवान की कथा में रति हो जाए, मतलब भगवान की कथा इतनी मीठी लगनी चाहिए कि कल किस, कब 6 बजे 6:30 बजेंगे, कल किस वक्त मैं जाऊंगा, अब मैं इतना समय कैसे बिताऊंगा, ये टाइम कैसे मेरा गुजरेगा। इस रति की परिभाषा ये है कि प्रतीक्षा रहे कि कल किस वक्त ये कथा दोबारा सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये कथा मेरे जीवन को, मैं जीवन धारण करके रखा है कथा के कारण, कथा नहीं है जैसे पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, कथा नहीं है तो शरीर का सांस बंद हो जाएगा। ये भक्तों की परिभाषा। दूसरे ये भगवत गीता के दसम स्कंद में है कि भक्त के जिसके रति होती है उसकी पहचान क्या है, मद मदचित मदगत प्राणा। वो भक्त मद चित्त, चित्त में मुझे धारण करके रखते हैं, उनके हृदय में सदा मैं बसता हूं, वो मेरे चरणों को अपने हृदय में, मेरे को अपने हृदय में बिठाते हैं, उनका मन हमेशा मेरे ऊपर केंद्रित होता है। तो मद चित्त भक्त कोई आपने उदाहरण जीवन में देखा जिसने अपने हृदय में भगवान को साक्षात रूप में धारण करके रखा हो? इसका उदाहरण हनुमान जी है, छाती खोल के सीताराम दिखाया था, इसको मदचित्ता कहते हैं। मदचित्ता वो भक्त है जिसके हृदय के अंदर साक्षात भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये मदचित्ता की परिभाषा है। जिसके भगवान कहता है मेरा चित्र जिसके हृदय में बसता हो, अथवा जो केवल देखता ही मुझे, बाहर भी मुझे देखे अंदर भी मुझे देखे, काम भी मेरे लिए करे, मन भी मुझ में लगाए, सेवा भी मेरी करे, प्रेम भी मुझसे करे, जीवन का लक्ष्य भी मुझे बना के रखे, तो उसको कहते हैं मदचित्ता। हृदय में भगवान का चित्र निरंतर छपा हुआ हो, इसकी बाहर की ये अभिव्यक्ति लड़के तो बहुत कम करते हैं, लेकिन माताजी लोग तो दिल का लॉकेट बना के किसी का फोटो डाल के रखती है और बदलती रहती है समय समय के, कभी बच्चे का होता है, कभी पति का होता है, कभी पोती का होता है, तो ये बदलने वाला नहीं है। तो वो चित्र हो गाधा गोविंद देव का हो जो हिलने वाला नहीं हो। और ये चित्र कैसे अंदर आएगा? जब कथा में रति होगी और कथा में भगवान के दया और करुणा और भक्त वत्सलता का वर्णन सुनेंगे तो हृदय पिघल जाएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय पिघल जाएगा, तब ये दुनिया की माया की सारी मूर्तियां उसमें बह जाएंगी और भागवत की कथा से राधा गोविंद देव जी की मूर्ति हृदय में आके अपना स्थान बनाएगी और वहां पक्की हो जाएगी। ये कथा में रति का प्रसाद है। अगर कथा में रति है तो कथा हृदय को पिघला के सारी माया की मूर्तियों को बिल्कुल पिघला के साफ कर देंगी। हृदय जब जैसे साफ हो जाएगा तो भागवत से भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण का सुंदर रूप हृदय में आंखें बंद करने से दिखने लगेगा कि कहीं हमारे हृदय में बैठे। और हनुमान इसका प्रणाम है, प्रमाण है, जिसने छाती खोल के और दिखा मदगत प्राणा। भागवत कथा में जिसको रति होती है उसकी दूसरी पहचान है मदगत प्राणा। अगर मेरे उसके हृदय से निकल जाऊं तो फिर उसकी प्राण निकल जाएंगे, वो जीवित नहीं रह सकता है। इसका उदाहरण महाराज दशरथ है। ये एक ऐसे पिता हुए हैं, राम के वापस लाने के लिए भेजा था सुमंत्र को के रथ में, वापस मना के ले आना बच्चे हैं। सुमंत्र खाली हाथ वापस आया, राम नहीं आया इतना सुना और दशरथ ने प्राण त्याग दी। ये ऐसा भक्त है, मदगत प्राणा का उदाहरण है। दूसरी कुंती महारानी वो भक्तिन है जिसने अर्जुन का के युधिष्ठिर महाराज को समाचार सुनाते हुए सुना कि अर्जुन मेरे चरण छूने तो आया नहीं, सीधा सभा में कैसे चला गया? तो किसी ने कहा वहां दुख से कृष्ण के स्वधाम जाने की कथा बस इतना ही सुना और कुंती महाराज ने प्राण त्याग दिए। बोला कृष्ण नहीं रहा तो प्राण रख के क्या करूंगा। इसलिए एक जगह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में लिखते हैं कि नंद बाबा कहते हैं एक ही पिता धरती के ऊपर हुआ है, वो दशरथ था, बेटे के जाने के बाद प्राण निकल गए, हम अभी तक प्राण कैसे रख के बैठे हैं, कृष्ण चला गया मथुरा और हम अभी तक जीवित हैं, हमारा प्रेम सच्चा नहीं था इसलिए हमारा प्राण अभी तक क्यों पड़ा है। और फिर यशोदा को उत्तर देते हुए कहते हैं, यशोदा बहुत बड़ा आदर से हमेशा, नंद बाबा तो राजा थे ब्रज के, लेकिन कृष्ण जब वापस मथुरा से नहीं ले आए तब तो उस दिन मुख से कह दिया कि आज आओ अकेले वापस क्यों आए, आपके प्राण क्यों नहीं निकल गए कृष्ण के ना आने के कारण। तो नंद तो आंखों से आंसू भर के कहता है मेरे प्राण तो निकल ही गए होते, कृष्ण नहीं आया तो मेरे प्राण निकल जाते तो प्रिय आपके भी प्राण निकल जाते, और हम नहीं रहते तो ये ब्रजवासी भी अपने प्राण छोड़ देते। और कृष्ण बोल के गया है कि मैं वापस आऊंगा, और वो यहाँ आता और हमको नहीं पाता तो उसको दुख होता ना। हम इसलिए जीवित हैं कि कृष्ण ने कहा है कि वापस आऊंगा, और हमको नहीं देखागा तो उसको दुख होगा, इसलिए हम तो रोज मरेंगे, रोज दुख भोगेंगे, लेकिन प्राण नहीं त्यागेंगे, क्योंकि कृष्ण आने के लिए कह के गया है, और वो आए और हमको न देखे और उसको दुख हो, ये हम सहन नहीं कर सकते। तो मदगत प्राण, ये ऐसा भक्त, तो महाराज दशरथ कुंती ऐसे अद्भुत उदाहरण है। तब फिर ये भक्त जो हम रोज माला उठा के घूमते हैं, ये कैसे जी रहे हैं? न तो छाती खोल के अंदर से राधा कृष्ण दिखाते हैं, न सीताराम दिखाते हैं, और माला झोली उठा के रोज घूमते हैं, आखिर ये कैसे जीते हैं? तो कहते हैं बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम। वो तो नित्य निरंतर मेरी कथा एक करता है, और उसका गला थक जाता है तो वो दूसरा कहता तुम बैठ जाओ, अब मैं कथा करता हूं तुम सुनो। एक कथा कहता है और दूसरा सुनता है, और फिर दूसरा करता है और एक सुनता है। ये तो कथा ही सुनते रहते हैं, इसकी कथा में इतनी रति हो गई है कि कथा ही इनको जीवित रख रही है। तो कथा में रति का बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम मिलता क्या है? तुष्यंति च, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। आत्म सुपरसीदति, उनकी आत्मा भगवान की कथा से साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। वैसे भी भगवान कह गए हैं यत गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी ना निर्देश हुआ। कोई मरने के बाद वैकुंठ में मुझसे मिलोगे ये भी मैं नहीं कहता हूं, और तुम घर बार छोड़ के और जाके हिमालय में किसी कंदरा में बैठ के मेरा ध्यान करोगे मैं मिलूंगा, ये भी मैं नहीं कहता हूं। न मरने के बाद मिलने की बात करता हूं, न घर छोड़ने से मिलने की बात करता हूं। जहां भी बैठ के मेरा कथा कीर्तन करोगे वहीं मैं उपस्थित होके आपके हृदय को प्रफुल्लित कर दूंगा, आनंदित कर दूंगा, और आप उसका अनुभव कर सकते हैं, मैं वहीं होता हूं। तो ये भगवान के वचन है। तो कथा इसलिए रति होनी चाहिए क्यों? कथा में ही तो भगवान है। ये तो सामान्य सब लोग जानते हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और महाप्रभु ने तो उसको और आसान कर दिया कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जहाँ कथा होती है वहाँ कृष्ण के नाम की जय जयकार होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस कृष्ण का नाम उच्चारण हुआ तो कृष्ण का अवतार हो गया। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सची को कहा था कि माँ मैं तुम्हारा नित्य पुत्र रहूँगा, जब कोई जीभा से आपका नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, तो आप जीभा मेरी माँ बन जाओगी, मैं आपका पुत्र बन के आपकी गोद में खेलूँगा। तो जीभा जब कृष्ण नाम लेती है तब ये जीभा सची माता के भाव से गोरंगा महाप्रभु को ग्रहण करती है। और महाप्रभु ने कहा और दूसरा जो भगवान का श्री विग्रह स्थापित करेंगे वो जिस चीज़ का बना होगा, मार्बल का हो कि अष्ट धातु का हो, वो मैं तेरी माँ के रूप में मैं तुमको माता के रूप में स्वीकार करूँगा और तुम्हारी गोद में रहूँगा। तो ये दो वचन सची माता को गोरंगा महाप्रभु ने दिए थे। इसलिए जहाँ कृष्ण कथा हो वहाँ कृष्ण के नाम की जय घोष बीच में होनी ही चाहिए, और वो जय घोष कृष्ण के उपस्थिति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो रति अगर कृष्ण कथा में नहीं हो रही है तो सारे धर्म के अनुष्ठान बेकार है। शरम एव ही केवलम का मतलब बेकार की मजदूरी है, पसीना है, लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि कथा में रति नहीं हो रही है। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कथा में रति कैसे हो, ये आगे प्रसंग आएगा। लेकिन अब हम एक श्लोक और आगे बढ़ते हैं, तब सिद्धांत बताते हैं कि धर्म का आचरण करो तो उसका लक्ष्य होना चाहिए अपवर्ग। अपवर्ग किसको कहते हैं? वर्ग कहते हैं चार पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको कहते हैं वर्ग। और अपवर्ग का अर्थ है जो इन धर्म क्यों पालन करना चाहिए, भगवान के चरणों की प्रेम प्राप्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। अगर धर्म का अर्थ काम है तो ये भाई धर्म के बाद क्या है? अर्थ। तो धर्म से अर्थ कमाएं और अर्थ से अगर भोग करें तो ये धर्म का लक्ष्य नहीं है। धर्म का लक्ष्य भोग नहीं है, धर्म का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। धर्मस्य अपवर्गस्य, अपवर्ग धर्म का अर्थ है। अपवर्ग का मतलब भगवत चरणों की प्राप्ति धर्म का अर्थ है। और धन का अर्थ भोग नहीं है। अर्थ कमाया और काम भोग किया, ये अर्थ का उद्देश्य नहीं है। अर्थ का उद्देश्य है जीवन का निर्वाह करना चाहिए, बाकी भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अर्थ न अर्थस्य धर्मस्येव कामो भी, धर्म का धन का अर्थ भोग नहीं है। सारे धर्म अगर अंत तो गत्वा भगवत धाम की प्राप्ति करके भगवान के चरणों में रति न करें तो सारे बेकार हैं। कभी भी भौतिक लाभ के लिए धर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और संतों का ये मत है, ऋषियों का ये मत है कि जो धर्म के कार्य में लगा हुआ है वो कभी भी भौतिक लाभ हो तो भी भोग में न लगाए और योग में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए दूसरे श्लोक भागवत में पहले ही कह दिया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भोग भावना वाले पवर्ग धर्म है उसको भागवत से निकाल दिया है, वो इसमें है ही नहीं। इसमें तो केवल शुद्ध प्रेम रस की धारा बह रही है, भाग्यशाली उसमें नहा ले, उसको पी ले, अपना जीवन सफल कर ले। तो धर्म का अर्थ भगवान की प्राप्ति है, और अर्थ अगर धर्म से आ भी जाए तो भोग में नहीं लगाना चाहिए। और इसका प्रमाण सुदामा विप्रा है, गया था कृष्ण के पास, मांगा नहीं। पत्नी ने कहा था मांगना, लेकिन मांगा नहीं। कृष्ण परेशान होकर मांगने लगे कि मेरे लिए कुछ लाए हो। सुदामा ने नहीं मांगा, रहा खाया पिया लेकिन मांगा नहीं। कृष्ण ने कहा आया मांगने है, मांग नहीं रहा है, मुझे देना है, मैं कैसे दूं बगैर लेने के। तो कुछ मेरे लिए लाए हो, भाभी ने कुछ भेजा है। तो बेचारे को बहुत संकोच हो रहा था, द्वारका के महल के अंदर वो तो चिंतामणि का बना हुआ महल, और ये बेचारे की पोटली में चार घरों से भिक्षा लिया हुआ तंदुल, वो कोई लाल कोई पीला कोई छोटा कोई मोटा कोई पीला, तो बड़ा संकोच हो रहा था। कृष्ण छीन के ले लिया और लेके उन चावलों को भगवान ने मुट्ठी भर के खा लिया। एक खाया, दो खाए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोला ब्राह्मण का इतना खाएंगे तो देंगे कहां से। और भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है अपने बेटों को, द्वारका में जब गिरगट को कुएं से निकाला था, द्वारका में जाओ तो जहां इस्कान गेट है, शिला इस्कान का प्रभुपाद गेट एक द्वारका में बना है, उसके पास में वो कुआं है, उसको गिरगट का कुआं कहते हैं, उसके अंदर से वो निर्ग महाराज निकला था। तो निर्ग महाराज के बाद भगवान ने प्रवचन करके अपने बच्चों को कहा, बेटा ब्राह्मण को, ब्राह्मण की कोई छोटी चीज भी तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम्हारे तुम उसको पका नहीं सकोगे, बड़ा संकट होगा, इसलिए ब्राह्मण को देते रहना, कोई उनकी उनकी कोई चीज को कभी भी तुम प्रयास करके प्राप्त करने का कभी भी मन में संकल्प भी मत करना, नहीं तो देखो इतना बड़ा महाराज निर्ग केवल एक गाय के निर्णय देने में देर करने के कारण गिरगट के शरीर को प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मणों को दिए हुए दान में कभी भी ध्यान देने के बाद भी अगर मन में आए कि इतना सारा इसको देने की जरूरत नहीं थी तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। ये तो महाराज रोमपाद ने एक हीरा ब्राह्मण को देते हुए देखा कि ये छोटा बड़ा बहुमूल्य, इसको मोटा देते हूँ ब्राह्मण को, ब्राह्मण मेरे तरह कोई मोटा होगा तो मोटा दे दिया होगा। ब्राह्मण ने देख के देखा कि यहाँ ये छोटा हीरा रखता है बहुमूल्य, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराना ही बंद किया और महाराज रोमपाद के राज में बरसात होना ही बंद हो गई। तो ब्राह्मण के धन को कभी भी खाना नहीं चाहिए। बात कहां से ब्राह्मण क्यों आ गए यहां, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सुदामा विप्र ने कुछ मांगा नहीं, तो कृष्ण ने मांगा। और जाते समय सुदामा को उसी पुराने फटे कपड़ों में वापस भेज दिया, कोई रथ में भी नहीं भेजा कि कोई ये न माने कि मेरा भक्त कुछ मांगने आया था, क्योंकि अयाचक भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। माधवेंद्रपुरी जैसा कोई अयाचक भक्त हो, और ये भगवान ये कहाँ सुदामे के चावलों में कृष्ण को इतना कोई स्वाद आ गया था। वो चैतन्य महाप्रभु जब रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जो सड़े हुए प्रसाद के चावल समुद्र में धो के खाते थे, तब भागते हुए कहे कि इतना बड़ा फीस्ट खाता है और मुझे बुलाता नहीं है, छीन के दो, उसने भी दो मुट्ठी वहाँ भी खा ली। इतने चावल खाने का कोई भगवान को बहुत शौक है, और भक्तों के हाथ से और प्रेम से वहाँ महाप्रभु ने दोबारा जाके रघुनाथ दास गोस्वामी के चावलों को खा लिया था ऐसे। तो सुदामा वापस उसी कपड़ों में वापस लौटा, और उसी धरती के ऊपर वैसे ही पैदल बेचारा चल के घर पहुंचा। लेकिन घर में देखा तो धन था, तब कहा कि दिया गोविंद ने है, ये गोविंद की महिमा गाने के लिए है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है। तो यहाँ लिखा है धन मिल भी जाए भक्ति के प्रताप से तो उसमें भोग की वासना नहीं करनी चाहिए, वो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये धर्म का अर्थ भगवत प्राप्ति है, और धन का अर्थ भोग नहीं है, भगवान की सेवा है। और तब कहते हैं फिर घर कैसे चलेगा, आखिर क्या करें। तब कहते हैं आपकी जब तक इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को भोग चाहिए, इतना इंद्रियों को भोग दीजिए जितने की जरूरत है। शरीर स्वस्थ रहे, खाइए इसलिए कि जीना है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। आधा दुनिया तो खाने के लिए जीती है, कभी खाने के लिए 10 किलोमीटर दूर आलू चाप खाने जाती है, और कहीं पानी पूरी खाने के लिए 5 किलोमीटर जाती है, और कहीं थाली। ये खाने के लिए लोग जी, ये तो जीने खाने के लिए जी रहे हैं, नहीं जीने के लिए खाना चाहिए जिससे शरीर चले। और करना क्या चाहिए, इतना कमाओ जैसे प्रभुपाद ने इसमें लिखा है, जैसे इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की जरूरत है, तो विवाह का वैसे नियम रखा है, घर बनाओ गृहस्थी बनो। दो एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई देखो तुम्हें जितनी जरूरत है उतना पैसा तुम्हारे पास आ गया, तुम इतनी दुख करते हो तो ये भी सोच लो तेरे को बाईपास ऑपरेशन के 10 लाख लगेंगे, वो भी एक तरफ रखो, तुम्हारे जो तुम्हें दुर्घटना दिमाग में आती है वो सब पैसा निकालो, फिर कहीं तो फुल स्टॉप लगाओगे, अभी कुछ नहीं करना है, अभी भगवान का भजन करना है, कहीं तो एंड करोगे कि नहीं करोगे। भाई इसके बाद तुम क्या करोगे, कमाऊंगा, कमा लिया आप क्या करोगे, घर बनाऊंगा, घर बना लिया आप क्या करोगे, अब बंगला बनाऊंगा, बंगला बना के आप क्या करोगे, गाड़ी लूंगा, गाड़ी ले आप क्या करूंगा, तो बोलेगा मरूंगा, इसके बाद और तो कुछ करने को है नहीं। तो यहां कहते हैं मरने तक का इंतजार मत करो, जितने में काम चल जाता है उतने में शरीर का और इंद्रियों का काम जलाओ, लेकिन मुख्य जीवन में आपका काम क्या होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस चेह। जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य खाना पीना भोग करना नहीं होना चाहिए, इतना शरीर को दो जिससे ठीक तरह चले स्वस्थ रहे, लेकिन भोग मत करो। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए क्या, तत्व जिज्ञासा। तो तत्व क्या है पूछ लिया, भाई तत्व है क्या जिसकी जिज्ञासा करें, जानने का प्रयास करें वो तत्व क्या है। तब कहते हैं जो विद्वान वेद को जानते हैं वो कहते हैं एक ही तत्व है, लेकिन तीन रूपों में तीन तरह से लोग उसको देखते हैं और उसको पाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो तत्व जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, वो एक ही है, लेकिन साधन के हिसाब से और साधक की दृष्टि से वो तीन रूप में दिखता है। तो ये तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए जीवन का लक्ष्य। इसीलिए वेदांत सूत्र में लिखाया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा किसकी करनी चाहिए, इस तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये तत्व इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म होता है, योगियों का लक्ष्य परमात्मा होता है, और भक्तों का भगवान के सेवा और भगवान के प्रेम की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होता है। तो तीन साधक हैं और तीन ये उनके प्राप्त करने के एक ही तत्व के तीन रूप हैं। लेकिन ब्रह्म भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है, परमात्मा भगवान का इस भौतिक जगत में सुहृद के रूप में सबके हृदय में रहने वाला रूप है। लेकिन भगवान इन दोनों का आधार और स्रोत है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है, भगवान कहते हैं ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है। तो ब्रह्म जिज्ञासा परमात्मा तत्व की जिज्ञासा और भगवान तत्व, भगवान परिपूर्ण है, परमात्मा अधूरा अनुभव है और ब्रह्म का अनुभव प्राथमिक है। हम ब्रह्मचारियों को इसका एक उदाहरण देके समझा रहे थे, ये बड़ा समाज है तो हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान सा साधन है। किसी छोटे बच्चे से भी दिन में पूछ लो कि अभी दिन है कि रात है, तो दिन में क्या बताएगा, क्या कहेगा, दिन है। उसको पूछे दिन कैसे कह रहे हो, तो क्या कहेगा, प्रकाश है। बोलो किसका प्रकाश है, बोलेगा सूर्य का प्रकाश है। यही उत्तर देगा कि नहीं देगा। तो कोई छोटा बच्चा भी दिन में प्रकाश है इसलिए दिन है और प्रकाश सूर्य का है ये तो कह सकता है कि नहीं कह सकता है, तो कोई बच्चा भी कह सकता है ना। तो असल में ज्ञानी लोगों के बड़े सारे मंथन करने के बाद भी निर्णय इसी बच्चे जितना ही होता है कि भगवान प्रकाश है, बस। तो बच्चे भी दिन को, अच्छा फिर अगर आप सबसे मैं अभी पूछूं कि आज सूर्य किसी ने देखा, प्रकाश सूर्य का है, दिन है ये तो कह दोगे, लेकिन सूर्य को कितने लोगों ने देखा, एक तो निकलता नहीं है आपके यहां, बादल के पीछे छुपा हुआ है, और कहीं निकल भी जाए तो हमारे आजकल के लोगों को सूर्य देखने का समय ही नहीं है। कितने लोग रोज सूर्य को देखते होंगे, मैं आपसे पूछता हूं। मतलब देखने का मतलब है जाके हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम करके, देखने का मतलब प्रेम से उसको चाहते हुए देखें कि तुम हमारे जीवन का साधन हो, तुम उगते हो तब हमारा जीवन चलता है, तुम निकलते हो तो सब कुछ देखते हैं, तुम्हारे बगैर तो हम अंधे थे, तुम भगवान की आंख हो, ऐसा कौन कहता है। कितने लोग कहते होंगे, 10-15 लोग होंगे 100 में, नहीं उससे भी कम होंगे। तो इसका मतलब जो सूर्य सामने पड़ा है जिसको देखा जा सकता है उसको देखने वाले भी आपको 1000 में 10 नहीं मिलेंगे, ये सच है कि झूठ है। तो इसका मतलब ज्ञान के नाम में भगवान को प्रकाश मानने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान को परमात्मा समझ के उसका ध्यान करके प्रणाम करने वाले 10% भी नहीं मिलेंगे। अब तीसरा प्रश्न आपसे है, सूर्य जो ये सूर्य है इसके अंदर एक सूर्य देव है, उसका नाम विवस्वान है, उसको देखा है, उसको मानते हो, उसको जानते भी नहीं है, उसको मानते भी नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि सूर्य देव विवस्वान को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया और सूर्य देव ने हनुमान जी को 1 साल तक शिक्षा दी, तो ये अद्भुत। लेकिन ये विवस्वान को जानना मुश्किल है कि नहीं है, मानना ही मुश्किल है, जानना तो दूर की बात है। तो ऐसे भगवान को जानना और मानना मुश्किल है, ब्रह्म को जानना बहुत सरल बच्चों की तरह है, परमात्मा का भी ध्यान करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान को मानना और जानना बहुत मुश्किल है। भगवान परिपूर्ण है, वो तो केवल श्रद्धा और विश्वास से माना जाएगा और शास्त्रों के शब्दों से और संतों के शिक्षा से भगवान का पता लगता है, और कोई रास्ता नहीं। भगवान के ऊपर विश्वास, शास्त्रों के वचनों के ऊपर श्रद्धा और साधुओं की शिक्षा से हो सकता है, और इसका कोई रास्ता नहीं है। भगवान आपके सामने आके खड़ा हो, आपके मेरे बाप का नौकर नहीं है, और ऐसे हो भी नहीं सकता। भक्ति श्रद्धा से शुरू होती है, और भगवान के शास्त्र के वचन और भगवान के भक्तों की शिक्षाओं से भगवान का जीवन में अनुभव हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अनुभव सबको हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। सूर्य को देख सकते हो, उसको देख नहीं रहे हो। अब फिर भी एक मैंने और प्रश्न भी पूछा था सबसे, आपसे भी वही प्रश्न पूछा हूं। अपने देश का कोई एक प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? है? उसका नाम भी आता है? हाँ, माननीय श्रीमान मनमोहन सिंह जी, ठीक है, है ना प्रधानमंत्री? आप लोग कितने लोगों ने उसको देखा है? हाँ, कितने लोग मिलके आए हो, देखा है? कितने लोग यहाँ बैठे हो, 500-800 लोग बैठे हो, बताओ ना। हाँ, नहीं देखा, मिले भी नहीं हो, तो फिर कैसे बोल रहे हो? फिर कौन से आधार से कह रहे हो? मैं नहीं मानता, कैसे बोल रहे हो? कहाँ देखा? टीवी में। और एक टीवी में देखा, और न्यूज़पेपर में देखा। तो न्यूज़पेपर की बात के ऊपर विश्वास है और भागवत की बात के ऊपर विश्वास नहीं है, और टीवी के ऊपर विश्वास है जो लाइट जाने के ऊपर बंद होगा, और मैं जीता जागता कह रहा हूं मेरी बात पे विश्वास नहीं है। तो बुद्धिमान आप हो तो अगर पेपर और टीवी पे विश्वास करते हो तो शास्त्र के ऊपर विश्वास करो और संतों के ऊपर विश्वास करो। और फिर मैं तो कटु वचन कहता हूं, जिस पेपर पे आप विश्वास करते हो वो पढ़ते कहां हो, बैठ के कभी ध्यान देना जाके, उसकी जहां जाना नहीं चाहिए उधर पेपर पढ़ते हैं उसके ऊपर विश्वास है, और यहां स्वच्छ मंदिर में भागवत पढ़ते हैं इसके शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं। ये सिद्धांत ठीक तरह समझना चाहिए। पेपर की उम्र एक दिन भी नहीं है, और पेपर के फोटो की वैल्यू क्या है बताऊं? 5-10 लाख रुपया खर्च करके किसी मंत्री को बुलाते हैं तब हमारा फोटो मंत्री के साथ निकलता है, और पेपर में छपता है तो 1000 आदमी को फोन करते हैं, आज मेरा पेपर में फोटो देखना, और शाम होते होते वो पेपर छोले भटूरे वाले दुकान पे पहुंचता है, और जहां हमारा फोटो होता है वह छोला और भटूरा मारता है, और तब हमको लगता है कि ये फोटो हमारे की दुर्गति हो रही है। हमारे देखते देखते वो बटोरे वाला फोटो पत्ता नीचे पेपर फेंकेगा और कुत्ता उसको चाटेगा, और हमारे मुंह को अच्छी तरह से चाटेगा एक पाव रख के, तब हमारे फोटो की दुर्गति होती है। तो उसका तो ये तो ये, और ये जो फोटो किसी को कृष्ण का रहा मिल जाए अर्जुन के साथ तो बड़ा संभाल के रखता है, और नहीं तो अभी जाके जल प्रवाह करेगा, उसके ऊपर छोले भटूरे नहीं डाल सकता। तो ये ऐसे पेपरों की बात में विश्वास करते हो, और ये सत्शास्त्र सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहा है, व्यासदेव भगवान के अवतार ने लिखा है, और ऐसे परम भागवत प्रभुपाद ने रात रात जाग के इसको ऐसे इस भाषा में लिखा है जो आप समझ सको, उसके ऊपर विश्वास ना आए तो ये मूर्खता है। पेपर को और टीवी को माने और शास्त्र और साधु को न माने, इसका मतलब वो बेचारा नीचे स्तर का व्यक्ति है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, उसका अभी तक उसको मानवता की माना भी नहीं आई। हरे कृष्ण। तो ये तत्व है, इस तत्व की जिज्ञासा करने वाला मानव कहलाता है, और भक्ति के द्वारा ये सारे तत्वों का कैसे, अब और 2-3 श्लोक हैं फिर भक्ति का, उस 16 श्लोक से 21 तक भक्ति का साधन है। तो कल दोपहर को जब यहाँ कथा होगी तब इसी को आगे चला के, और जितना पहुँच सके उतना पहुँचने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो अब आप आज सबका धन्यवाद करते हैं, फिर भी एक बार 5 दिन से आप इतने उत्साह के साथ हमारा उत्साह बढ़ाया, और भगवान श्री कृष्ण के इस वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया, वर्णन और श्रवण किया, आप सबका पुनः एक बार हम धन्यवाद करते हैं।